मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। सिडनी में जारी ट्रेन हड़ताल में आमने सामने आई सरकार और कर्मचारी यूनियन। भारत में 51 दिन बाद आए 20,000 से कम कोरोना मामले। और ऑस्ट्रेलिया ने समाप्त किया अपना बीजिंग विंटर ओलंपिक अभियान। और अब खबरें विस्तार से। न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे ने सिडनी में जारी ट्रेन हड़ताल की निंदा की है। उनका कहना है कि ये यूनियन और लेबर की मिली हुई साजिश है। हजारों यात्रियों से आग्रह किया जा रहा है कि वे अपनी यात्रा की योजना समय रहते बना लें। राज्य सरकार रेल, ट्रैम और बस यूनियन को इस औद्योगिक कार्यवाही के लिए जिम्मेदार बता रही है। सुरक्षा गारंटी, सफाई और निजीकरण के मुद्दों पर सरकार और यूनियन के बीच चले आ रहे लंबे विवाद में ये हड़ताल सबसे नई कड़ी है। श्री पेरोटे का कहना है कि ये निरी राजनीति है जिसे लेबर और यूनियन साथ मिलकर कर रहे हैं।
Make no mistake, this is a coordinated attack by the Labour Party and the union movement. They even flagged it on the front page of the newspaper today. This is no accident. This is a concerted campaign by the unions and the Labour Party to cause mass disruption across our city. They're not even hiding it.
इसी बीच यूनियन अधिकारियों का कहना है कि आज की कार्यवाही हड़ताल नहीं कही जा सकती। एलेक्स क्लासेंस न्यू साउथ वेल्स रेल, ट्रैम एंड बस यूनियन के राज्य सचिव हैं। उनका कहना है कि वे राज्य सरकार के इस आरोप से निराश हैं।
I just want to make the point straight up. This is not a strike. We are not on strike. All of the people behind me, all the people sitting in the mill rooms all across the network are ready to work at a minute's notice. We're all there. We're ready to do the work. As we agreed in the commission late on Saturday night, we had 10 lawyers against us in the commission on Saturday night trying to terminate our industrial action and terminate our enterprise agreement.
23 महीने की लंबी बंदी के बाद आज ऑस्ट्रेलिया की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं पूर्ण टीका पा चुके यात्रियों के लिए फिर खुल रही हैं। कोरोना के तेज फैलाव के चलते अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बंद कर दी गई थीं। पर्यटन उद्योग इसे महामारी के मुश्किल दौर से उबरने की ओर एक बड़ा कदम मान रहा है। ऑस्ट्रेलियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ACCI के मुखिया एंड्रूज मैककेलर का कहना है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
More than 50 flights internationally coming in to major Australian cities today. So the borders are back open to fully vaccinated travellers in all visa categories. The first tourists arriving in Australia for 704 days. It's very good news for Australia's tourism industry and it will be a vital boost to the Australian economy.
उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि महामारी से पहले जितने आगंतुक आने में तो समय लगेगा, लेकिन पर्यटन क्षेत्र में अब उम्मीद नजर आ रही है। ऊर्जा कंपनी AGL ने $7.5 billion की कंपनी को टेकओवर करने की पेशकश को ठुकरा दिया है। ऑस्ट्रेलियाई तकनीकी दिग्गज माइक कैनन ब्रूक्स और कैनेडियाई निवेश कंपनी ब्रूकफील्ड ने यह प्रस्ताव प्रेषित किया था। एटलेजियन संस्थापक ब्रूक्स का कहना है कि वे चाहते थे कि AGL को खनिज संसाधनों से हरित संसाधनों की ओर ले जाया जाए।
Through the weekend, and we'll continue to move forward. We think our bid obviously has significant value for shareholders and is a far better option than the alternate path, which is the demerger that's on the table, from the point of view of risk and the point of view of shareholder value. So we'll continue to work with them on that.
AGL ने इस प्रस्ताव को ये कहते हुए ठुकरा दिया था कि उनके शेयर धारकों के लिए ये उचित नहीं था। AGL ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी ऊर्जा कंपनी है। ये देश के सबसे बड़े ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जकों में से भी एक है। देश में कोरोना वायरस की स्थिति की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स ने आज 4,916 नए कोरोना मामले और 7 मृत्यु दर्ज की हैं। राज्य में 1,288 लोग इस वायरस के चलते अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 74 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। वहीं विक्टोरिया में आज 5,616 संक्रमण और 3 कोरोना मृत्यु दर्ज की गई हैं। राज्य में 361 कोरोना मरीज अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 49 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। उधर क्वींसलैंड में 4,114 नए कोरोना मामले और 6 कोरोना मृत्यु दर्ज की गई हैं और तस्मानिया में 469 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के चलचित्र उद्योग को और समावेशी बनाने के नज़रिए से SBS ने आज 21 फरवरी को अपनी SBS कमिशनिंग इक्विटी एंड इंक्लूजन गाइडलाइंस जारी की हैं। इनके अंतर्गत SBS पर प्रसारित होने वाली सामग्री के लिए विषय विशेष टारगेट दिए जाएंगे। इनमें पटकथा और बिना पटकथा दोनों ही तरह की सामग्रियाँ शामिल रहेंगी। इन गाइडलाइंस का उद्देश्य विविध समुदायों के सामने पर्दे पर और जीविका के रास्ते में आने वाले अवरोधों को हटाने और उनका प्रतिनिधित्व करने का है। ये गाइडलाइंस जवाबदेही के लिए भी समर्पित हैं, जिनके अंतर्गत 3 साल के समय में एक अकाउंटेबिलिटी रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बेलारूस के रक्षा मंत्री का कहना है कि यूक्रेन की सीमा पर तनाव के बीच रूस के साथ उनके सैन्य प्रयासों को जारी रहना जरूरी है। ये सैन्य प्रयास यूक्रेन के पश्चिमी बॉर्डर पर जारी थे और इन्हें रविवार 20 फरवरी को समाप्त होना था, लेकिन अब रक्षा मंत्री विक्टर क्रेनिन का कहना है कि इन्हें बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। उनका कहना है कि ये फैसला रूस और बेलारूस की बाहरी सीमाओं और पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में बढ़ रही सैन्य गतिविधियों को देखते हुए लिया जा रहा है।
First of all, these steps are aimed to prevent war. Our president said it not just once during meetings. We don't want war. However, they don't hear us, or they don't want to hear us. Therefore, we created the group of forces which will respond if needed.
नेटो का कहना है कि रूस के लगभग 30,000 सैनिक बेलारूस में हैं, जिन्हें यूक्रेन पर आक्रमण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि मॉस्को लगातार ऐसी किन्हीं भी इरादों से इनकार करता रहा है। इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ कोरोना संक्रमित पाई गई हैं। बकिंगम पैलेस से जारी वक्तव्य में कहा गया कि 95 वर्षीय ब्रितानी महारानी को कोरोना के हल्के लक्षण महसूस हो रहे हैं और वे इस सप्ताह विंडसर कासल में हल्के कार्यभार संभालती रहेंगी। उनके बड़े बेटे और उत्तराधिकारी प्रिंस चार्ल्स और बहू डचेस ऑफ कॉर्नवॉल कैमिला भी हाल ही में संक्रमित पाए गए थे, लेकिन प्रिंस चार्ल्स अब काम पर लौट आए हैं। मालूम हुआ है कि विंडसर कासल में कई लोग संक्रमित पाए गए हैं। महारानी को कोरोना रोधी टीके की 3 खुराकें प्राप्त हैं। और अब खबरें भारत से। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के कुल 16,051 नए मामले सामने आए हैं, जो कल के मुकाबले 19.6% कम है। इसके साथ ही भारत में अब तक कुल कोविड संक्रमितों की संख्या 4,28,38,524 हो गई है। पिछले 24 घंटों में देश भर में कुल 206 लोगों की कोविड के चलते मृत्यु हुई है और अब तक देश में कोविड से कुल 5,12,109 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। RSS की संस्था सेवा भारती ने दिल्ली में GB रोड पर रहने वाली महिलाओं की बच्चियों की शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ साथ उनके व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास के लिए अपराजिता नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। संस्था के महासचिव सुशील गुप्ता ने बताया कि इस सड़क पर दिल्ली में पिछले 150 वर्ष से देह व्यापार होता आया है। इस दौरान अगर यहाँ कुछ बदला है तो सिर्फ इस सड़क का नाम, जिसे 1965 में स्वामी श्रद्धानंद मार्ग कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि पिछले साल संस्था ने पुलिस उच्च न्यायालय के कुछ अधिवक्ताओं और दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ व्याख्याताओं के सहयोग से अपराजिता नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की थी। संस्था ने अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से GB रोड पर रहने वाली महिलाओं को इस बात के लिए मनाया कि अपनी बच्चियों के बेहतर भविष्य के लिए वे उन्हें खुद से और इस माहौल से दूर करें। और अब डॉलर का हाल। आज यानी सोमवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.71 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 72 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। बीजिंग विंटर ओलंपिक्स के समापन समारोह के दौरान खेल की मशाल को एक बड़े स्नोफ्लेक आकार के घट में रखकर बुझा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष थॉमस बाक ने समारोह का समापन बराबरी, शांति और दुनिया भर के लोगों के लिए कोरोना रोधी टीके की उपलब्धता की मांग के साथ किया। ऑस्ट्रेलिया पदक तालिका पर 18वें पायदान पर रहा और इसी के साथ अब खिलाड़ियों का ध्यान 2024 में पेरिस में होने वाले ग्रीष्म खेलों की ओर केंद्रित हो गया है। और अंत में एक नज़र कल यानी मंगलवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल तेज धूप खिली रहेगी, यहाँ अधिकतम तापमान 34 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में भी कल धूप ही धूप है, अधिकतम तापमान 28 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में तेज धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में कल आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 22 जबकि न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में तेज बारिश की आशंका है, अधिकतम तापमान 26 जबकि न्यूनतम 20 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में भी कल बारिश हो सकती है, अधिकतम तापमान 30 जबकि न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। और डार्विन में कल बारिश के साथ तूफान की आशंका है, अधिकतम तापमान 32 जबकि न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप छांव का मौसम रहेगा, दिल्ली का अधिकतम तापमान 27 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।